कल की मजलिस में हमने अर्ज किया कि जिक्र ये नफ्स की इस्लाह का प्राइमरी टूल है। नफ्स की इस्लाह का जो सरे फहरिस्त अमल है वो जिक्र है। अल्लाह को याद करने से दिल की इस्लाह होती है, इस नफ्स की इस्लाह होती है। कुरान पाक में भी नफ्स की इस्लाह का नुस्खा यही बताया गया, हदीस पाक में भी इस नफ्स के इस्लाह का जो नुस्खा है वो यही बताया गया, कसरत जिक्र करना। इस हवाले से हमने कल की मजलिस में ये भी अर्ज किया कि कसरत जिक्र आम तौर पे उसी को नसीब होगा जो मशाइख की सोहबत में आना जाना रखेगा, वरना शैतान जो है वो पाबंदी से जिक्र करने नहीं देता। मशाइख का तजर्बा ये है कि जो शख्स मशाइख की सरपरस्ती में मशाइख के साथ इस्लाह का ताल्लुक कायम करने के साथ साथ जिक्र नहीं करता, उसको आम तौर पे पाबंदी जिक्र की नसीब नहीं होती। कुछ अरसे तो कर लेता है, फिर जिक्र के अंदर, मामूलात के अंदर कमी कोताही आती जाती रहती है। बल्कि जो सालिक मशाइख के साथ इस्लाह का ताल्लुक तो कायम कर लेते हैं मगर शेख के पास आना जाना नहीं रखते, उनके भी जिक्र की पाबंदी जो है वो नहीं रहती। मशाइख की सोहबत में आने से नफ्स की इस्लाह में ये एक बहुत बड़ा कदम है कि इंसान को जिक्र की पाबंदी नसीब होती है, मगर नफ्स की इस्लाह जो है उसमें सिर्फ जिक्र की पाबंदी नहीं बल्कि और भी कुछ तरीके और भी कुछ मामलात करने और उसमें से जो अहम मामला है नफ्स की इस्लाह के हवाले से वो सोहबत में आना, नसीहत का सुनना, इस्लाह का होना, ये भी जरूरी है। तो सोहबत इसलिए भी जरूरी कि जिक्र और मामूलात नेक आमाल पर इस्तकामत आती है, और सोहबत मशाइख की इसलिए भी जरूरी कि मशाइख इंसान की बातनी अहवाल पे नजर रखते हुए जो मुनासिब इसलाह है वो कर देते हैं। तो कई मर्तबा सालिक जो है वो जिक्र अस्कार की पाबंदी तो कर रहा होता है मगर फिर भी उसको सोहबत की जरूरत इस नफ्स की इस्लाह के लिए पड़ती है कि मशायख उसको उसके नफ्स की बुराई पर मुत्तला भी फरमाते हैं और उसकी इस्लाह भी फरमाते हैं। नबी अलैहिस्सलात वसलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, कि मोमिन जो है वो मोमिन का आईना है, कि एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन के पास आएगा तो उसे अपने ऐब नजर आएंगे। तो ये जो अयूब का दूसरे ईमान वालों से हासिल कर लेना, अपने अयूब का पता लगा लेना, ये एक अच्छी चीज है और खास तौर पे मशायख तो इसी काम पे मामूर है कि बातनी अमराज की निशानदेही करनी और फिर मुनासिब इसलाह करनी। तारीख के अंदर इस इसलाह की तारीख में ये दो चीजें जो है इसकी खूब ज्यादा इस्तेमाल मशाइख ने फरमाया इसलाह के लिए, एक खिदमत और दूसरा डांट डपट सख्ती करना, कि दोनों चीजें ऐसी हैं कि जिससे इस नफ्स की बहुत इसलाह होती है। नफ्स के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी जो है वो तकब्बुर है। डांट डपट करने से इंसान का तकब्बुर कम होता है। डांट डपट करने से तो कम नहीं होता है, डांट डपट सहने से कम होता है। तो मशाइख डांट डपट करते हैं ताकि सालिक जो है इस डांट डपट को सहे। इसी तरह मशाइख खिदमत के कामों पे लगाते हैं। खिदमत के काम कई मर्तबा वो काम होते हैं जो मुलाजमीन करते हैं, या जिनको हम जाहिरी तौर पे दुनिया में मामूली लोग समझते हैं वो वाले काम करते हैं। तो ऐसे काम करने से भी इंसान को नफ्स की इस्लाह इस लिहाज से नसीब होती है, इंसान अपने आप को भी कमतर समझना शुरू हो जाता है। तो ये जो कमतर समझना है ये इस्लाह का बड़ा कदम है। हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये तसव्वुफ क्या है। तो हजरत फरमाया कि ये तसव्वुफ अपनी मैं को मिटाने का दूसरा नाम। तो मशायख की सोबत में आने वाले सालिक की मैं को मिटाया जाता है, उसके तकब्बुर को कम किया जाता है, उसकी अपनी नजर में उसको छोटा किया जाता है। और क्योंकि ये तकब्बुर उम्मुल अमराज है, सारे बातनी अमराज की माँ है, सारे बातनी अमराज का सर चश्मा है, इस मर्ज की जब इसलाह हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे बातनी अमराज की इसलाह हो जाती है। इसलिए मशायख के यहाँ डांट डपट का सिलसिला, सख्ती का सिलसिला भी रहता है। खिदमत के जरिए से भी इंसान के नफ्स की ट्रेनिंग की जाती है। चुनाचे हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर सख्ती होती, जितने भी सालिकीन आते उनको बड़ा डिसिप्लिन में रखा जाता, हर चीज का वक्त सेट था, सुबह से लेके शाम तक के निजामुल औकात थे, और निजामुल औकात के पाबंदी नहीं करने वाले के साथ बहुत सख्ती की जाती थी। हत्ता के जो शख्स रात को वक्त पर नहीं सोता तो हजरत का हुक्म ये था कि खानकाह पे जो दरबान है जो मुतायन वक्त से ज्यादा देर जागता हुआ नजर आया उसका बिस्तर उठा के खानकाह से बाहर फेंक दे। इन सख्तियों का मकसद, कि इंसान में सब्र पैदा हो, इंसान में आजजी पैदा हो, और ये सब्र और आजजी जो है ये तमाम बातनी अमराज को सही करने के लिए काफी है। जिसके अंदर ये दो सिफात आ गई, बाकी बातनी अमराज भी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मशाइख इस तकब्बुर और उजब को कम करने की तरफ खूब तवज्जो देते हैं। हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर एक मरतबा मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह और पाकिस्तान के बड़े मुहद्दिस हजरत मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हजरत तशरीफ लाए। ये उस जमाने की बात है कि ये दोनों हजरत जवान थे और अभी अभी दर्स निजामी से फरागत हुई थी, नए उलमा बने थे मगर होनहार थे। अल्लाह ने उनको इब्तदाअन ही पूरे बरे सगीर पाक व हिंद में कबूलियत भी अता फरमाई थी। तो दोनों हजरत हजरत की खानकाह पे तशरीफ लाए तो उनकी रिहाइश ऐसी रखी गई कि एक ही कमरे में उनको ठहरा दिया गया। अब खानकाह पे तो उसूल और जवाबित बहुत सख्त है, खास तौर पे ये सोने का जो मामला था, वक्त पे सोना बहुत जरूरी। अब किसी दीनी मसले में आपस में डिस्कशन इनका शुरू हुआ और जो डेडलाइन हजरत ने रखी हुई थी सोने की उससे भी आगे वक्त चले गया। तो खानकाह का जो दरबान है वो अपने उसी स्टाइल में आया, और उन्होंने आके इन दो बड़े उलमा को सख्ती से कहा कि नौजवानों सो जाओ वरना तुम्हारे बिस्तर को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, यही हजरत का हुक्म है। हजरत के एक बड़े खलीफा हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह ने जब दरबान को इतने बड़े उलमा के साथ यूं बात करते हुए सुना तो उसने जाके दरबान से कहा कि मियाँ इनसे यूं बात नहीं करनी है, ये बड़े उलमा है, ये थोड़ी देर अगर ज्यादा जाग भी गए तो कोई मसला नहीं है। उस दरबान ने ये बात सुन तो ली, अगले दिन हजरत की खिदमत में हाजिर हुए, और हजरत की खिदमत में हाजिर होके उस दरबान ने अर्ज किया कि हजरत रात ये जो बड़े दो उलमा आए थे ये जो मुतायन वक्त है सोने का उससे ज्यादा देर जाग रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप वक्त पे सो जाएं वरना आपका बिस्तर जो है वो खानकाह से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो दरबान ने कहा कि हजरत ये ख्वाजा साहब जो है ना आपके खलीफा, इन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये बड़े उलमा हैं इनको ऐसे नहीं कहना चाहिए। हजरत ने फरमाया कि अच्छा, ख्वाजा साहब ने आपको रोका, खानकाह के उसूलों को जो हमने बनाए हैं उनके ऊपर अमल करने से आपको रोका है, आप ऐसा करें ख्वाजा साहब का बिस्तर उठा के बाहर फेंक दें। अल्लाह अकबर, तो सख्ती का ये आलम था। ख्वाजा साहब का दरबान ने उठा के बिस्तर बाहर फेंक दिया, अल्लाह अकबर। मगर ख्वाजा साहब भी मिजाज शनास थे, सारी इस्लाह के सिस्टम को समझते थे कि ये जो सख्ती की जाती है इसमें कोई जाती इनाद या जाती नाराजगी नहीं है, ये इस्लाह के लिए है। तो ख्वाजा साहब भी बाहर चले गए और हजरत ने 2-3 दिन तक अंदर आने नहीं दिया। मगर ख्वाजा साहब क्योंकि इस सारे मिजाज से वाकिफ थे, 2-3 दिन गुजरे, क्योंकि शायर थे तो शेर लिख के भेजा, और शेर अंदर लिख के हजरत को जब भेजा तो शेर वाली पर्ची पे लिखा था, अगर तू दर ना खोलेगा तो मैं भी दर ना छोड़ूंगा, अगर तू दर ना खोलेगा तो मैं भी दर ना छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, उधर तेरी इधर मेरी। अल्लाह, तो इस शेर को सुन के फिर हजरत ने उनको अंदर बुलाया। तो खानकाहों पर शेख की खिदमत में सोहबत हासिल करने पर सिर्फ ये फायदा नहीं नफ्स की इस्लाह के हवाले से कि मामूलात की पाबंदी ऐसे सालिक की ज्यादा रहती है, बल्कि नफ्स की इस्लाह में मशायख डायरेक्ट इस्लाह करते हैं, बातिन के अमराज की निशानदेही करना और उन बातिन अमराज की निशानदही के हल बताना, और खास तौर पे ये डांट डपट के टूल को इस्तेमाल करना, खिदमत के टूल को इस्तेमाल करना, ये एक मामूल रहा है। अल्लाह ताला हमें इस्लाह बातिन नसीब फरमाए, व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह। दुआ कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात व सलाम अला सैयद अलंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ व अमलन मुतकब्बल व लिसानन ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم السلام
السلام
ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله